ओम शांति। हमारा ये नेक्स्ट सत्र शुरू होने जा रहा है। हमारे बीच दीदी जी आ गए हैं। दीदी जी, मैं आपके लिए कुछ कहना चाहूंगी। कलिया घूंघट खोलकर मुस्काई है, कलिया घूंघट खोलकर मुस्काई है, खुशियां झूमकर ऐसी चली आई है, खुशियां झूमकर ऐसी चली आई है, जैसे कहीं बचती हुई शहनाई है, जैसे कहीं बचती हुई शहनाई है। आज उषा दीदी जी आप हमारे बीच में जो आई, जैसे इस चमन में बाहर चली आई है। आप सोच सकते हैं इस शायरी से। मैं यही कहना चाहूंगी कि आज का जो हमारा टॉपिक है कि शांति की अनुभूति, सुबह से हम देख रहे हैं कि जीवन में हमको सफलता लानी है तो उसके लिए, सुख शांति के लिए हमारे अंदर क्या क्या परिवर्तन करना है, तो वो परिवर्तन होगा हमारे अंदर से ही। तो हमारी जो उषा दीदी जो सीनियर राजयोगा टीचर है, 33 ईयर्स से समर्पित रूप से यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। आपने कई देश तथा विदेश में ये सेवाएं दी है, हजारों से भी ज्यादा कंपनी तथा कॉलेज स्कूल कई जगह अपने मैनेजमेंट के कोर्सेस भी कराए हैं। आपका एक किताब भी छप चुका है, सेल्फ मैनेजमेंट, जो आप ले सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर है। और दीदी का खास एक संशोधन जो उन्होंने हाल ही में किया है गीता के ऊपर, जो सभी को प्रश्न है कि गीता किसने लिखी है, गीता का भगवान। तो हाल ही में कुरुक्षेत्र में एक बहुत बड़ा महासम्मेलन में दीदी जी ने इसके बारे में सबके सामने अवगत कराया था, जो बहुत प्रख्यात हुआ। और दीदी जैसे कहते हैं ना कि स्पिरिचुअलिटी को कैसे हम अपने अंदर धारण करें, तो एक प्रैक्टिकल उदाहरण हमारे सामने दीदी जी है। तो आज हम सुनेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में शांति की अनुभूति कर सकते हैं। आदरणीय उषा दीदी, ओम शांति।
ओम शांति। अभी के इस शांति अनुभूति सत्र में आप सभी एक बहुत सुंदर शांति की अनुभूति की यात्रा पर चलेंगे, लेकिन उसके पहले शांति क्या है उसको समझ ले, क्योंकि एक होता है साइलेंस, एक होता है पीस, दोनों में क्या अंतर है? क्योंकि तभी हम पावर ऑफ पीस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। काफी पहले सत्र में आप एनर्जेटिक तो हो ही गए हैं, और इसलिए ज्ञान सरोवर परिसर के इतने सुंदर वातावरण में आप सभी बैठे हैं, खास समय निकाल करके आए हैं। तो इस शांति अनुभूति की जो आश है, शहरों में मुश्किल से हो पाती है, समय निकाल पाते हैं, उस गहन शांति के अनुभव में हम जाएंगे। लेकिन जैसे कहा, वो शांति क्या चीज है? एक कहानी से मैं आरंभ करूंगी कि एक बार एक राजा था और उसने ऐलान किया कि जो शांति के ऊपर एक बहुत सुंदर चित्र निकालेंगे उसको इनाम मिलेगा। काफी आर्टिस्ट अलग अलग राज्यों से भी पहुंच गए, सभी ने बहुत सुंदर शांति को लेकर के चित्र निकाले कि पीस क्या चीज है। जब सारा चित्र बनाना समाप्त हो गया तो राजा को बुलाया गया कि आप सभी चित्र को देखो और कौन सा चित्र पसंद आया, या रियल वो फीलिंग देता है शांति की। जैसे जैसे राजा सारे चित्र को देख रहा था, उसको दो चित्र बहुत पसंद आए। जो शांति को दर्शाता था। एक चित्र था जिसमें दिखाया था कि बहुत सुंदर एक झील है और चारों ओर जो पेड़ पौधे पहाड़ियां इतनी शांति में जैसे खड़ी है, वो झील भी इतनी शांत थी जैसे पूरा प्रतिबिंब उस झील के अंदर दिखाई देता था। सभी को लगा इसी को ही पहला इनाम मिलेगा, लेकिन राजा को जो पसंद आया वो दूसरा चित्र था। और वो दूसरा चित्र जो चित्रकार ने अपनी कल्पनाओं से बनाया था कि चारों ओर इतने घनघोर बादल है, बिजलियां कड़क रही है, इतनी जोर की बारिश है और झरने इतने आवाज के साथ बह रहे हैं और उस पहाड़ी में नीचे कहीं एक छोटी सी गुफा थी जहां एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। इतनी शांत थी कि ये चारों तरफ का आवाज उसको कहीं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। राजा ने उसको पहला इनाम दिया। राजा का भाव यही था कि चारों ओर प्राकृतिक शांति हो और उसमें शांति का अनुभव करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चारों ओर आवाज हो, स्ट्रेस हो, तनाव हो, परिस्थितियां हो और उन सब में अगर व्यक्ति शांति में जी सके, ये शांति का अनुभव हर कोई करना चाहता है। बाकी ऐसे पहाड़ों पर निकल आए 3 दिन रिट्रीट करने के लिए, वहां शांति अनुभव कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जहां अपने कार्य क्षेत्र पर चारों ओर इतना आवाज हो और उसके बीच में ये शांति का अनुभव करने का आपको मौका मिल जाए, या वो विधि सीख लिया हो जो अपने आप को रिलैक्स कर दो और बैटरी चार्ज कर लो, ये शांति हर कोई चाहता है। भाग करके कितना दिन जाएंगे। इसलिए आवश्यकता है वो शांति की। अब वो शांति कहां मिलेगी और वो शांति का मतलब क्या है? तो शांति का मतलब ये नहीं कि विचार शून्य हो जाना। शांति का मतलब ये नहीं कि हम किसी से इंटरैक्ट ही न करें, किसी से व्यवहार में न आए, लेकिन शांति का मतलब है इट्स अ डीप इनर फीलिंग ऑफ प्लेजेंटनेस एंड ब्लिस। एक प्रसन्नता का, एक प्रशांति का अनुभव हो, ऐसी भावनाएं अंदर में जागृत हो। शांति का मतलब है एक इनर हार्मनी, भीतर की सुसंवादिता, जहां एकांत भी हो, शीतलता भी हो और वातावरण के अंदर भी प्रशांति हो। इट्स एन अलर्ट स्टेट। शांति हमें डल नहीं बनाती जीवन के अंदर। इट्स एन अलर्ट स्टेट ऑफ माइंड। मन को जागृत रखती है, लेकिन उसके अंदर एक क्लैरिटी है, कलेक्टेडनेस है, भावार्थ ये कि कंफ्यूजन के बादल न हो, डाउट्स के बादल न हो, लेकिन उस सब से मन स्पष्ट हो, क्लियर हो, तब वो शांति का अनुभव कर सकते हैं। यही शांति आधार है, फाउंडेशन है आंतरिक शक्तियों को और आंतरिक संसाधनों को एक सही दिशा देने के लिए। मनुष्य के पास अथाह शक्ति है, अथाह क्षमता है, अथाह संसाधन है हमारे भीतर, लेकिन मनुष्य इतना कंफ्यूज्ड होने कारण उसको समय पर सही दिशा नहीं दे पाता, उसको यूज नहीं कर पाता है। तो जब भीतर से स्पष्ट है, आंतरिक हार्मनी है, तब वो अपनी क्षमताओं को, अपने संसाधनों को भी सही दिशा में प्रयोग कर सकता है। उसके फायदे तो हम सभी जानते ही हैं कि मन जब शांत है तो उसके फायदे क्या है, कि मन शांत होने कारण उसके बहुत बड़े फायदे यही है कि वो फोकस्ड रह सकता है, प्रोडक्टिव रह सकता है और भीतर से सशक्त रह सकता है। उसमें सहनशीलता आ जाती है और धीरज व्यक्ति के अंदर आने लगता है, स्टेबिलिटी आती है, शांति की सशक्त स्थिति में व्यक्ति अच्छा डिसीजंस ले सकता है, एक बहुत सुंदर कम्युनिकेशन लोगों के साथ कर सकता है और इसलिए कैसे भी प्रकार के तनाव या कैसे भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स उसके जीवन में आए, कोई क्राइसिस आए, तो भीतर से सशक्त होने कारण उसको अच्छी तरह से हैंडल कर सकता है। मोर पॉजिटिव, क्षमाशील और दूसरों के लिए भी सहयोग देने वाला बन जाता है। उसके भीतर आत्मसंतुष्टि होती है, स्वयं से संतुष्ट, उससे दूसरे भी संतुष्ट होते हैं और वो भी दूसरों से संतुष्ट, उसको दूसरे के लिए कोई कंप्लेन्स नहीं है और सभी लोग उससे भी बहुत प्रसन्न रहते हैं। ये फायदे जब हम जानते हैं तो कौन उस शांति की शक्ति को अपने जीवन में प्राप्त करना नहीं चाहेंगे। लेकिन ये शांति कहाँ मिलेगी? ये शांति की हम बात कर रहे हैं, एक शांति की शक्ति की, क्या ये पहाड़ों पर मिलेगी, बगीचों में मिलेगी, समुद्र किनारे पर मिलेगी या जंगलों में मिलेगी? कहाँ मिलेगी? या स्मशान में मिलेगी? स्मशानी शांति की बात भी हमने सुनी है कि लोग जब स्मशान में जाते हैं तो उस समय भी एक अजीब शांति होती है, वैराग्य दिलाने वाली शांति होती है, लेकिन वो भी टेम्पररी होती है। उसके बाद जैसे ही वहां से आते हैं, वापस व्यक्ति अपने जीवन शैली में लग जाता है और सब भूल जाता है। या मंदिरों में मिलेगी, मस्जिदों में मिलेगी, गुरुद्वारे में मिलेगी, गिरजाघरों में मिलेगी, कहां मिलेगी ये शांति? जो शांति हम चाहते हैं, जिसको राजा ने पहला इनाम दिया, वो शांति कहां मिलेगी? या खाली मौन में बैठ जाए, कोई कार्य ही न करें, हम विचार शून्य हो जाए, क्या ये शांति का अनुभव होगा? कितनी देर बैठ सकेंगे मौन में? कितनी देर विचार शून्य स्थिति में बैठ पाएंगे? वो भी बैठ नहीं पाते हैं। इसलिए साइलेंस या पीस, उन सब स्थानों पर बाह्य शांति जरूर मिलेगी, लेकिन मन ही अगर परेशान हो तो वो शांति कहां मिलेगी? हमें खाली बाह्य शांति नहीं चाहिए, वातावरण की शांति नहीं चाहिए, स्थान की शांति या वो शांति नहीं चाहिए, हमें ऐसी शांति चाहिए जो सब कर्म करते हुए भीतर से हमारा मन रिलैक्स्ड भी रहे और सशक्त रहे, वो शांति हमें चाहिए। और इसीलिए साइलेंस और पीस में बहुत बड़ा अंतर है। साइलेंस एक्सटर्नल है जबकि पीस आंतरिक है, इंटरनल है। साइलेंस में इट्स अ हार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी, कि जब आप शारीरिक रूप से कोई आसन में बैठ जाओ और उस समय आपका मन स्थिर हो जाए, ये शांति हो सकती है। लेकिन पीस माने इट्स अ हार्मोनियस स्टेट ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स, भीतर की है ये, जहां भावनात्मक और मानसिक एकता हो जाती है, ये हमें शांति चाहिए। साइलेंस जो इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मेडिटेशन, और पीस इज द रिजल्ट ऑफ मेडिटेशन। शांति की शक्ति एक अनुभूति है। साइलेंस आरंभ में वातावरण शांत होता है तो मेडिटेशन अच्छा होता है। साइलेंस में व्यक्ति का कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होता है, लेकिन पीस हमें अनुभूति की ओर ले चलता है। साइलेंस में व्यक्ति को अच्छे विचार आ सकते हैं, वो उसको मोटिवेशन मिल सकता है, लेकिन पीस में उसको इंस्पिरेशंस मिलने लगते हैं, बहुत सुंदर जैसे इंस्पिरेशंस आने लगते हैं। साइलेंस में बॉडी रिलैक्स हो जाता है, माइंड रिलैक्स होता है, लेकिन पीस में रिचार्ज होती है, बैटरी चार्ज होने लगती है, इसलिए पावर ऑफ पीस कहा। साइलेंस में व्यक्ति सशक्त महसूस करेगा, लेकिन पीस में अंदर से समृद्ध महसूस करेगा, क्योंकि उससे जुड़ी हुई सारी शक्तियां धीरे धीरे एकत्रित होने लगती है अपने भीतर। इसलिए कहा जाता है साइलेंस इज गोल्डन बट पीस इज अ पावर, एक शक्ति है, खाली गोल्डन नहीं लेकिन पीस इज अ पावर। उसका सोर्स क्या है? जिस तरह कहा जाता लाइट का सोर्स है, डार्कनेस का सोर्स नहीं है, अंधेरे का सोर्स नहीं, एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस, इसी तरह जीवन का सोर्स है मृत्यु। माना जब वो सोर्स चला जाता है तो मृत हो जाता है। हैप्पीनेस का सोर्स है लेकिन उदासी, माना जहां हैप्पीनेस का अभाव है वहां उदासी आ जाती है। इसी तरह पीस का सोर्स है अशांति का, तनाव का सच पूछो तो कोई सोर्स नहीं, शांति की शक्ति का अभाव यही स्ट्रेस क्रिएट करता है। इसलिए एब्सेंस ऑफ थॉट्स, जैसे दुनिया में कहते हैं एब्सेंस ऑफ साउंड या एब्सेंस ऑफ वॉर, पीस, ये शांति नहीं, लेकिन शांति का स्रोत है इट्स अ हार्मोनियस फीलिंग ऑफ वैल्यूज पावर्स एंड वर्च्यूज। जब उसको भीतर में हम ले आते हैं तब मन जैसे जैसे सशक्त और समृद्ध होने लगता है तो शांति में रहना उसको अच्छा लगता है। इसलिए कहा कि पीस इज द हार्मोनियस फीलिंग ऑफ ऑल वैल्यूज इन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइफ। जीवन के अंदर जैसे एक प्रिज्म से लाइट जाती है तो सात रंग निकलते हैं, शांति का कलर हमेशा इसलिए सफेद दिखाते हैं क्योंकि सफेद रंग में सात रंग समाए हुए हैं। और वो सात रंग जो आज सुबह के सत्र में भी आपने आत्मा के परिचय में देखा होगा कि वो सात रंग कौन से हैं, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सत्यता, सुख, आनंद और शक्ति। ये सातों गुण जब जीवन के अंदर आने लगते, ये सात गुण ही सिर्फ नहीं है, ये शक्ति भी है और ये वर्च्यूज भी है, तो उसको जब जीवन में शामिल कर लेते हैं तो शांति वो सफेद रंग है जिसके अंदर ये सात रंग समाये हुए हैं। उसको कैसे अनुभव करें? उसको अनुभव करने के लिए पांच कदम है। पहला कदम है जिसको कहते हैं सेल्फ डिस्कवरी। और जब मनुष्य ने अपने मन को एकाग्र किया, बाह्य जगत पर फोकस किया, तो उन्होंने कई खोज कर दिए, कई डिस्कवरीज कर दी, कई बातों को एक्सप्लोर कर दिया बाह्य जगत के अंदर। बाह्य जगत जितना विशाल है, भीतर का जगत भी इतना ही विशाल है। इसलिए जब वही मन को हम अंदर फोकस करें तो भीतर भी अनेक शक्तियां हैं जिसको हम बाहर ले आ सकते हैं, उसको निकाल के ला सकते हैं। बहुत सुंदर मुझे एक बात याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति बहुत गरीब था, इतना गरीब था कि लोगों से कर्जा ले लेकर के अपने परिवार को भी पालता रहा। एक बार सबने मना कर दिया कि अभी तुझे कोई कर्जा भी नहीं देगा, तुम अपने परिवार को पालो। उसके पास एक जमीन का टुकड़ा था, लेकिन वो भी बंजर जमीन, क्या करता, कुछ नहीं निकलता था उसके ऊपर। उसको पहली बार जीवन में अपनी गरीबी का इतना एहसास हुआ और उसने सोचा ऐसा जीवन जीने से तो मर जाना अच्छा है। और उसको मरने के विचार आने लगे कि इतने में वो देखता है कि कुछ लोग उसके तरफ आ रहे हैं। उन लोगों ने आकर उनसे पूछा कि भाई ये जमीन किसकी है? उसने कहा मेरी जमीन है। तो वो लोगों ने कहा हमारे रिसर्च से पता चला है कि इसके नीचे तेल है, अगर आप हमें खुदाई करने की परमिशन दो, थोड़ा ड्रिलिंग करने का परमिशन दो, तो हम उसका भाड़ा दे देंगे आपको। तो उसने कहा वैसे भी मुझे पैसे की जरूरत है, आप भले मुझे भाड़ा दे दो, आप भले ड्रिलिंग करो। उन लोगों ने ड्रिलिंग किया तो सचमुच पता चला कि उसके नीचे इतना तेल था कि प्रतिदिन 80,000 बैरल तेल निकल सकता है। इतने खुश हो गए वो और उस व्यक्ति से कहने लगे ये जमीन का टुकड़ा तुम हमें बेच दो, उसके लिए हम तुझे लाखों रुपया देंगे। जब उसके हाथ में वो पैसे आए तो वो सोचने लगा कि अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे अपनी गरीबी का एहसास हो रहा था, क्योंकि मुझे यही पता नहीं था कि जिस पर मैं खड़ा हूं, जिस जमीन के टुकड़े पर मैं खड़ा हूं, उसके नीचे इतना धन समृद्धि है। इतना खुश हो गया। ठीक इसी तरह मनुष्य को देखें अगर हम, तो मनुष्य भी कभी कभी अपने जीवन में हताश हो जाता, उदास हो जाता, दिल शिकस्त हो जाता है और आध्यात्मिक रूप से अपने आप को गरीब महसूस करने लगते हैं, जैसे कि कुछ है ही नहीं जीवन के अंदर, जीवन असार लगने लगता है। कभी कभी उसको भी मरने के विचार आने लगते हैं, बहुत दुख है, बहुत तनाव है, बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत परिस्थितियां हैं। तब तक कभी कभी भगवान से भी कहते कब तक ऐसा जीवन जीते रहेंगे, क्योंकि हमें भी पता नहीं है कि हमारे भीतर इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है, इतनी समृद्धि है, बस आवश्यकता तो ड्रिलिंग करने की, भीतर जाने की। और जब भीतर जाते हैं ड्रिलिंग करते हैं, मेडिटेशन वो विधि है जो हमें भीतर ले जाती है और उस शक्ति को बाहर ले आने की। तो हमारा जीवन भी खुशियों से भर जाएगा, शांति से भर जाएगा, शक्ति से भर जाएगा और जीवन के हर प्रॉब्लम्स को डील करना, हैंडल करना हमारे लिए भी आसान हो जाएगा। दूसरा स्टेप है उसका जिसको कहते सेल्फ रिकवरी। जैसे किसी को बुखार आता है तो डॉक्टर भी यही कहते हैं कि 3 दिन तो चलेगा, ये वायरल है। शरीर के पास अपने आप आयुर्वेदिक या नेचर के और यही कहते कि शरीर के पास अपने आप हीलिंग पावर है, रिकवर करने की शक्ति है। आप चाहे तो दवाई ले सकते हो लेकिन वैसे भी ये 3 दिन तो चलना ही है, 3 दिन के बाद अपने आप ठीक हो जाएंगे। भीतर की शक्ति जब बाहर आने लगती है, कई बार नेचर के और कह देते हैं सिस्टम को आराम चाहिए, आप उपवास कर लो 3 दिन, देखो ठीक हो जाओगे। ठीक इसी तरह जीवन के अंदर भी जो बातें आती है उसको हील करने के लिए हमारे पास अंदर में ही वो शक्ति है, इसलिए जब उसको उजागर करते हैं तो उससे रिकवरी कर सकते हैं और जीवन को उस दिशा की ओर आगे बढ़ाते हैं। उसकी विधि है सेल्फ डिसिप्लिन। गीता के अंदर बहुत सुंदर बात आती है कि योग माना क्या, तो कहा योग माना स्वयं को सुसंस्कृत करने का विज्ञान। इट इज अ साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिनिंग, स्वयं को सुसंस्कृत करने का विज्ञान, यानी उस संस्कृति को भी हम बाहर ले आते हैं अपने कर्म में, व्यवहार में, अपने इंटरैक्शन में, अपने स्वभाव में, अपने संस्कारों में। तो जैसे जैसे हम अपने फिजिकल कर्मेंद्रिय को, भीतर की ज्ञानेंद्रिय को डिसिप्लिन करने लगते हैं, वैसे वैसे उस शक्ति को हम फोकस करने लगते हैं। चौथा स्टेप है सेल्फ लिबरेशन, कि जो हरेक के अंदर अच्छाई भी है बुराई भी है, कई बुरी आदतें भी है जीवन के अंदर, कई ऐसे कमजोरियां भी है, उस कमजोरियों से मुक्त होना भी चाहते हैं। बार बार भगवान के सामने जाकर कई बार आपने प्रार्थना की होगी कि हे प्रभु, ये बुरा स्वभाव है मेरा, गुस्सा आ जाता है, इस कमजोरी से मैं छूटना चाहता हूँ, इस बुराई से मैं मुक्त होना चाहता हूँ, ये कमजोरी से मुझे मुक्त कर दो। कहते हैं ना कई बार प्रार्थना में, इतनी शक्ति देना दाता जो विश्वास कभी कम न हो, उससे हम मुक्त हो जाए। लेकिन हमारे अंदर वो शक्ति है जिसको अगर हम बाहर ले आए तो मुक्त होना आसान हो जाता और सही अर्थ में जीवन में रहते हुए मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। और उसके बाद सेल्फ एम्पावरमेंट, यानी हम अपने आप को सशक्त बना देते हैं, एम्पावर्ड फील करते हैं जब वो शक्तियां भीतर से बाहर निकलती है तब। तो ये 5 कदम है उसको अनुभव करने के लिए। जैसे कहा सेल्फ डिस्कवरी, आज आत्मा के लेसन में आपने ये डिस्कवर किया कि आत्मा है ही सतो गुणी स्वरूप, 7 गुण उसकी वास्तविकता है, ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। ये ज्ञान क्या करता है, तो मनुष्य जीवन में रहा हुआ ज्ञान उसको समाप्त कर देता है। मनुष्य जीवन में रहा हुआ ज्ञान कौन सा है, सबसे बड़ा अज्ञान है अहंकार। ego is the greatest ignorance in human life. जैसे जैसे ज्ञान आता जाता है उस अज्ञान से हम मुक्त होते जाते हैं. आज यही ईगो के कारण कितने प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं, यही ईगो के कारण कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती है, यही ईगो के कारण कितने क्लैशेस होने लगे हैं, कितने परिवार टूट रहे हैं, कितने संबंध टूट रहे हैं. आध्यात्मिक ज्ञान क्या करता है, उस ईगो को न्यूट्रलाइज कर देता है. और जब ईगो न्यूट्रलाइज हो जाता है तभी डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जाती है. इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान वर्तमान जीवन शैली में एक खूंटी कड़ी हो गई है. तो ज्ञान चाहिए. ज्ञान न होने कारण ही ये अज्ञान अपना स्वरूप दिखाने लगा है. आध्यात्मिक ज्ञान उस अज्ञान को निष्क्रिय कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है. उसके साथ साथ पवित्र भावनाएं, पवित्रता चाहिए. कई बार देखते हैं किसी दो व्यक्ति की बहुत अच्छी दोस्ती होती है, कुछ समय के बाद देखो दोस्ती टूट जाती है. अगर पूछा जाए आपकी तो बहुत अच्छी दोस्ती थी, क्या हुआ, कहेंगे बाद में पता चला ये व्यक्ति के अंदर कुछ और बाहर कुछ था. बाहर से बड़ी सफाई वाली बातें कर रहा था लेकिन अंदर में उसका मन मैला था. आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल विथ हिम सो आई मूव्ड अवे. तो व्यक्ति कंफर्टेबल कहां फील करता है, जहां भावनाओं में शुद्धि हो, विचारों में शुद्धि हो, व्यवहार में शुद्धि हो, वहां कंफर्टेबल फील करता है. क्यों? क्योंकि वही मेरी वास्तविकता है. इसलिए जहां अंडरस्टैंडिंग है, पवित्र भावनाएं हैं, उसी संबंध में प्रेम पनप सकता है. और जहां आज हरेक को क्या चाहिए, प्यार ही तो चाहिए. और प्यार क्यों नहीं है, क्योंकि शुद्धि नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं, इसलिए प्यार नहीं है. और प्यार के बदले स्वार्थ आ गए. फिर भगवान से रोज मांगते रहते हैं, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हैं. एक बूंद मिल जाएंगी तो भी बहुत है जीवन जीने के लिए. भगवान कहते हैं अरे ले लो. लेकिन आज की दुनिया में यही तो कहा लोगों ने, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, वो भी नहीं पढ़ पाए हम. तभी हमारे संबंधों में शांति और सत्यता जीवन के अंदर आने लगती है. इसीलिए आत्मा को कहते सत चित आनंद स्वरूप. उसका स्वरूप ही सत्य है. उस सत्य स्वरूप में हम अपने आप को ले आएंगे, शांति का अनुभव जीवन के अंदर करेंगे. और जहां ये चारों बातें हैं वहां जीवन में सच्चा सुख है, शांति है. नहीं तो सुख शांति बस चाहना रखते हैं, सुख शांति है नहीं. एक बार हमारा कार्यक्रम था अहमदाबाद में, कार्यक्रम को थोड़ी देर थी, लोग आ रहे थे, आश्रम पर ही कार्यक्रम था. हम बैठे थे, स्वाभाविक रीति से टेलीफोन लैंडलाइन वहीं थी, तो फोन बजा. मैंने वो फोन उठाया, सामने से एक बच्चे की आवाज थी. बच्चे ने पूछा ओम शांति है ये, मैंने कहा ओम शांति. तो दीदी आज वहां कोई प्रोग्राम है, मैंने कहा प्रोग्राम है. तो बच्चा कहने लगा दीदी मेरे मम्मी पापा वहां आए होंगे. मैंने कहा बुलाना है आपको, बात करनी है. कहने बात नहीं करनी है, आप उनको सिखाना कि घर में शांति से कैसे रहना चाहिए. बहुत झगड़ा करते हैं, बहुत झगड़ा करते हैं. माँ बाप इतना झगड़ा करते हैं, आज बच्चे कंप्लेन करने लगे हैं. उनको सिखाना कि शांति से कैसे रहे, सुख से कैसे जिए और जीने दे। एक समय था माँ बाप कंप्लेन करते थे, बच्चे बहुत झगड़ा करते हैं। आज बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं, माँ बाप बहुत झगड़ा करते हैं, हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता है, हम पढ़ नहीं पाते हैं। कितनी सारी शिकायतें हैं, सुख शांति चाहते हैं। और जहां ये सब बातें हैं वहां आनंद है। सुख शांति ही नहीं तो आनंद कहां से होगा? आनंद तो दूर, खुशी भी नहीं है आज के जीवन के अंदर। खुशी का अनुभव करने के लिए भी लोगों को लाफिंग क्लब्स ज्वाइन करने पड़ते, बगीचे में जाके हंसना पड़ता है। घर में अगर व्यक्ति मुस्कुराता है तो कहते क्या बात है, इतने खुश कैसे दिख रहे हैं, माना खुश रहना नहीं चाहिए हमें। कैसी विडंबना है, कैसी लाइफस्टाइल हो गई है, माना जो हमारी वास्तविकता है उसमें अगर हम स्थित रहे, खुश रहे, तो लोगों को बेचैनी होती है, कैसे खुश रह सकते हैं आज आप? आज खुश कैसे हो, क्या बात है, खुशी की ऐसी कौन सी बात है? इसलिए भी कभी कभी लोग टेंशन में रहते हैं, अरे खुश रहने लगेंगे तो लोग सोचेंगे क्या हो गए, नॉर्मल है? कई बार कई लोग पूछते भी है, क्या हंस रहे हैं, नॉर्मल है? इसलिए बेचारे को बगीचे में जाके हंसना पड़ता है, घर में हंस नहीं सकते हैं, क्योंकि घर में हंसे तो घर वाले ही कहने लगेंगे अब नॉर्मल तो नहीं हो गए। और जहां ये छह बातें हैं वहां आत्मशक्ति, विल पावर है। आज विल पावर तो छोड़ो, कॉन्फिडेंस भी खत्म हो गया है। तो ये सात गुण हमारी वास्तविकता है, और ये वास्तविकता में जब हम मन को स्टेबलाइज करते हैं तो भीतर की शक्ति को बाहर ले आते हैं, उस गुण को हम बाहर ले आ सकते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने कर्म में, अपने व्यवहार में, अपने जीवन में, अपने संबंधों में। उस एनर्जी को फ्लो होने देते हैं, लेट इट फ्लो, वो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को प्रवाहित होने दो और जीवन के अंदर बहुत सुंदर अनुभव होगा। और तब हमारी जो कमजोरियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, भगवान के सामने भी जाकर गाते, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, कहते हैं ना कि ये विषय विकारों को मिटाओ तो प्रभु, और हमारे जीवन में उसके कारण जो पाप हो रहे हैं उसको हटाओ, है ना। लेकिन भगवान कहते हैं जब आत्मा की शक्ति को बाहर ले आएंगे तो ये कमजोरी अपने आप चली जाएंगी। ये कमजोरी क्यों आई है? आज अंधेरा हो यहां पर, अंधेरे को निकाला नहीं जाता है, दीपक जलाओ रोशनी करो तो अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है। ठीक इसी तरह भीतर में ये कमजोरियां जो आ गई है, कमजोरियों को निकाला नहीं जाता है, शक्ति को जागृत करो, उस ऊर्जा को बाहर आने दो तो अपने आप ये कमजोरी दूर होने लगेगी। और उसकी विधि है कि हम सेल्फ डिसिप्लिनिंग ले आए, अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार प्राप्त करें। जितना अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर हमारा राज्य होगा, अधिकार होगा, उतना उसको हम सही दिशा में चैनलाइज कर पाएंगे, एक सकारात्मक दिशा में उस ऊर्जा को भी ले जाएंगे, और उससे हमारे जीवन के अंदर कितनी प्राप्तियां, सर्व प्राप्तियां सहज हो सकेगी, और जीवन में रहते मुक्ति का अनुभव बहुत सुंदर तरीके से हम कर पाएंगे। इसीलिए गीता में कहा, मुक्ति से भी श्रेष्ठ जीवन मुक्ति है। एक है दुनिया से चले जाना, मुक्ति में जाकर के रहना, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ जीवन में रहते मुक्ति का अनुभव करना। जैसे एक व्यक्ति गहरी नींद में सो गया, इतनी गहरी नींद में है कि वो बाजा बजाने वाले या नगाड़े बजाने वाले वहां से गुजर गए, लेकिन इतनी गहरी नींद थी जो उसको उठा नहीं पाए। जब वो उठता है तो उसके परिवार वाले भी कहते इतनी गहरी नींद कि आपको पता ही नहीं चला। कहते हाँ आज मैं बहुत थका हुआ था ना इसलिए बहुत गहरी नींद थी। लेकिन वो गहरी नींद का अनुभव जब निंद्रा की अवस्था में था तब था, मालूम ही नहीं था तब, तो उठने के बाद महसूस किया उस फ्रेशनेस के कारण कि हाँ बहुत गहरी नींद सोए आज, पता ही नहीं चला इतना घंटा कैसे सो गए। ठीक इसी तरह जब मुक्ति की अवस्था में है वहां कोई अनुभव नहीं है। इसीलिए कहा मुक्ति से श्रेष्ठ जीवन में रहते, उस मुक्ति का अनुभव जब जीवन में रह करके करो, जागृत अवस्था में करो, वो श्रेष्ठ है। और वह तभी होगी जब हम अपनी कमजोरियों से अपने आप को संपूर्ण मुक्त करके उस सकारात्मक ऊर्जा को, उस पॉजिटिव एनर्जी को अपने जीवन में फ्लो होने देते हैं, और तब ऐसा महसूस होगा कि हम एम्पावर्ड हैं। जैसे वो ऊर्जा हमारे आसपास एक ऐसा ओरा क्रिएट करती है, पॉजिटिव एनर्जी का ओरा क्रिएट करती है, जिसमें हम अपने आप को सशक्त महसूस करेंगे। और आज की दुनिया में ये मेडिटेशन इसीलिए आवश्यक है क्योंकि व्यक्ति को उस वातावरण में कार्य करना पड़ता है जहां चारों ओर नेगेटिव ऊर्जा होती है, नेगेटिव वातावरण होता है, नेगेटिव बातें होती है, उसमें जाना पड़ता है। और जब उस माहौल में जाते हैं तो जो नेगेटिव ऊर्जा वाले लोग हैं, थोड़ी बहुत हमारे अंदर पॉजिटिविटी होती है उसको भी सक कर लेते हैं। और व्यक्ति इसीलिए घर में जब वापस आता है तो इतना ड्रेन फील करता है जैसे ताकत ही नहीं है। तो मेडिटेशन द्वारा जब हम भीतर से अपनी ऊर्जा को बाहर निकालते हैं और ये ओरा क्रिएट करते हैं, तो ये ओरा एक प्रकार का हमारे आसपास एक कवच बन जाता है कि कैसे भी नेगेटिव एनवायरनमेंट में चले जाओ, उस नेगेटिव एनवायरनमेंट में जाने के बाद भी वो लोग हमारी उस ऊर्जा को खींच नहीं पाएंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी हमारी उस ऊर्जा का प्रभाव उसके ऊपर पड़ने लगता है और वो भी महसूस करते हैं कि आपके संग में जब भी आते हैं ना इतना रिलैक्स फील करते हैं, किसी किसी के संग में जाते इतना भारी हो जाते, इतना टेंशन हो जाता है, लेकिन आपके पास आओ तो और ही मन रिलैक्स हो जाता है क्योंकि आपकी वो पॉजिटिव एनर्जी जो है वो उनको भी ताकत दे रही है। वो खींच नहीं सकते हैं, आपको ड्रेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप और भी उनको शक्ति प्रदान करते हैं। और यही हर एक चाहता है जीवन के अंदर कि कहीं से थोड़ी शांति मिल जाए, कहीं से थोड़ी शक्ति मिल जाए, प्यार की एक बूंद मिल जाए, बस यही चाहता है। कल से लेकर के आप यहां आए हैं या परसों से आप आए हैं, वातावरण के अंदर भी आपको लगता है एक चार्ज्ड वातावरण है, थकावट तो नहीं लग रही है ना, सारा दिन सुनने के बाद भी थकावट नहीं है ना, ऊर्जावान अपने आप को महसूस करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं, माइंड से कितना रिलैक्स होते हैं क्योंकि सारा कॉम्प्लेक्स का वातावरण चार्ज किया हुआ है, उसी मेडिटेशन द्वारा चार्ज है। अगर यहाँ का वातावरण चार्ज कर सकते हैं तो आप अपने घर का वातावरण नहीं चार्ज कर सकते हो? कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? कर सकते हैं ना। तो इसी तरह मेडिटेशन की रेगुलर प्रैक्टिस करते हुए और बैटरी को चार्ज करने के लिए उस परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ना पड़ता है, उस जनरेटर के साथ अपने आप को जोड़ना पड़ता है जो सर्वधर्म मान्य है, जिसको सभी धर्म वालों ने स्वीकार किया है। उस परम स्रोत परमात्मा के साथ जब मन और बुद्धि को जोड़ते हैं तो जो ऊर्जा मिलती है उसके लिए मांगने की जरूरत नहीं कि प्रभु शक्ति दो, शांति दो। जैसे धूप में आप खड़े रहो सुबह में, सूर्य से मांगना नहीं पड़ता कि हे सूर्य तेरी गर्माइश मुझे दे, नहीं, खड़े रहो रोम रोम के अंदर वो गर्माइश भर जाएगी। समुद्र के पास खड़े रहकर समुद्र से मांगना नहीं पड़ता है कि तेरी शीतल हवा मुझे दे, खड़े रहो रोम रोम के अंदर शीतलता भर जाएगी। परमात्मा से भी मांगने की जरूरत नहीं, लेकिन जब अपने मन और बुद्धि को जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, उसको प्यार से याद करते हैं, तो उस परमात्मा से भी वो ऊर्जा अपने आप फ्लो होने लगती है और हमारे अंदर भरने लगती है। इसी का नाम सहज योग या मेडिटेशन है, जो कोई भी कर सकता है। आत्म अनुभूति ही आधार है उस परमात्मा अनुभूति का। तो आत्म अनुभूति करने के लिए जब आत्म भाव में हम अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं कि मैं ये देह नहीं हूं, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, उस भाव में अपने मन को ले आओ, अंतर चक्षु से अपने वास्तविक स्वरूप को देखो कि मैं ये देह नहीं, इस देह से परे एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, और मेरे पिता परमात्मा वो भी एक आत्मा है, लेकिन वो परम है, श्रेष्ठ है, महान है, और इसीलिए वो परमात्मा के साथ जब अपने आप को जोड़ते हैं, विजुअलाइज करते हैं कि मैं भी आत्मा, मेरा पिता परमात्मा भी प्रकाश पुंज है, तो जोड़ना आसान हो जाता है। जैसे दो वायरों का कनेक्शन करना होता, दोनों का ऊपर का इंसुलेशन उतारना पड़ता है, फिर वायर को जोड़ो तो करंट पास होती है। एक का इंसुलेशन उतारा, एक का नहीं उतारा और वायर जोड़ो तो करंट पास नहीं होती है। ठीक इसी तरह परमात्मा को कोई आवरण नहीं है और हमारे ऊपर अनेक ये आवरण चढ़े हुए हैं। कहीं पोजीशन का कॉन्शियसनेस है, कहीं अपने शरीर का कॉन्शियसनेस है, कभी किस बात का कॉन्शियसनेस है, तो ये अनेक आवरण चढ़े हुए हैं। इसलिए जब मैं आत्मा हूं, इस भाव में अपने आप को स्थित कर देते तो अपने आप सर्व आवरण हट जाते हैं और तब कनेक्शन बहुत सहज हो जाता है। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए चलेंगे उस मेडिटेशन में और उस शांति की शक्ति को महसूस करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे विचारों से, क्योंकि विचार वो शक्ति है जो आपके भीतर, जैसे जैसे उसको ले जाएंगे, उसको महसूस करेंगे। खाली शब्दों को सुनना नहीं है, लेकिन शब्दों के साथ साथ उस भाव में अपने आप को ले चलना है, और जितना उस भाव में उसको फील करेंगे, एक एक शब्द को आप फील करते जाएंगे, उस शब्द को महसूस करते जाएंगे, उसका एहसास होता जाएगा, वैसे वैसे अनुभव करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो चले स्वस्थ होकर के बैठिए, पीठ सीधी हो, टाइट नहीं होना है, लेकिन बॉडी को रिलैक्स रखे, लेकिन स्वस्थ अवस्था में हो, और थोड़ी देर के लिए अपने मन के विचारों को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं। अंतर चक्षु से स्वयं को आत्मभाव में देखते हैं। मैं अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति पुंज आत्मा, चैतन्य शक्ति हो, ये शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने धारण किया है संसार रंगमंच पर अपना पात्र निभाने। वास्तव में मैं आत्मा इस देह रूपी वस्त्र से अलग हो, न्यारी हो, मालिक हो, सर्व कर्मेंद्रिय के। कुछ क्षण के लिए मन को ले चलते हैं एक यात्रा पर, अपनी वास्तविकता की ओर, और महसूस करते हैं कि मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में शुद्ध और पवित्र हूं। मेरा ओरिजिनल स्वरूप पवित्र स्वरूप है। जैसे कि एक चमकता हुआ बेदाग हीरा, उस स्वरूप में अपने आप को देखो। धीरे धीरे मैं महसूस करती हूँ कि मेरा स्वधर्म शांति है, मेरे मन की गति शांत होती जा रही है। शांति के प्रकंपन महसूस कर रही हूं। मन में प्रसन्नता समाई हुई है। मेरा मन शीतल होता जा रहा है। एकदम रिलैक्स महसूस करती हूँ। कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं। कितना सुंदर अनुभव है ये। इसी शांति में सच्चा सुख महसूस कर रही हूं। यही मेरी वास्तविकता है। इसी शांति में परम आनंद है। मैं आत्मा, धीरे धीरे उस गहन शांति की ओर और स्वयं में शांति की शक्ति महसूस करती हूं। अपने आप को उस शांति की शक्ति से सशक्त करती हूं। आत्मा के सातों गुणों की ऊर्जा को बाहर ले आती हूं अपने स्वरूप में और उस ऊर्जा को प्रवाहित होने देती हूं। अपने जीवन में, संबंधों में, हर कर्मेंद्रिय में हर कर्म में धीरे धीरे मन को ले चलते हैं परमात्मा की ओर। जैसे मैं आत्मा, दिव्य ज्योति पुंज, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी शांति के सागर है, अनंत प्रकाशमान है, दिव्य तेजो में सर्वशक्तिमान है। अपने ध्यान को पिता परमात्मा की ओर एकाग्र करती हूं। और परमात्मा से सर्व शक्तियों की किरणों को स्वयं में समाती जा रही के सागर पिता परमात्मा से शांति की शक्ति को स्वयं में भरती जा रही है। महसूस करती हूँ, मैं शांत हूँ, शुद्ध हूँ, शक्ति स्वरूप। शांति की शक्ति अपने स्वभाव में भर देती है। मेरा स्वरूप शांत और शीतल, कितना सुंदर स्वरूप है। शांति की शक्ति से सशक्त रूप है मेरा। मैं भीतर से स्वयं को समृद्ध महसूस करती हूँ। कुछ क्षण के लिए इसी शांत स्वरूप में स्थित हो जाती, अपने चारों ओर उस शांति को प्रकंपित करती हूँ। कितनी सुंदर ये अनुभूति है। चारों ओर शांति के प्रकंपन को, शांति के वाइब्रेशंस को महसूस कर रही हूं। यही शांति आंतरिक स्पष्टता को और सशक्त अवस्था को बनाता है। जैसे अपनी बैटरी को चार्ज करती जा रही हो, इसी शांति में कितना आनंद है। यही मेरा सत्य स्वरूप है। परमात्मा के सानिध्य में सर्व शक्तियों से स्वयं को शक्तिशाली बनाती हूं। कितनी न सौभाग्यशाली हूं जो परमात्मा द्वारा परम शांति की शक्ति को प्राप्त कर सकती सुख का अनुभव कर रही हूं। कितना सुंदर ये प्रवाह का अनुभव है। धीरे धीरे वापस इस पंच तत्व की ओर, शरीर में लुकुटी के मध्य में स्वयं को देखती हूँ। शक्ति को अपने स्वरूप में, अपने चारों ओर प्रवाहित करती हूँ।
ज्ञान योग की लगी है ऐसी लगन, परमात्मा पैर में क्या हुआ परमात्मा पैर में रह गए हम सब मगन, है या नहीं? बिल्कुल ना दीदी जी, आपने जो आज हमें शांति की जो अनुभूति कराई है, आप देख रहे हैं जिससे ये पूरा खिल गया है फूलों का चमन, है या नहीं? अनुभूति किया सभी ने जी। आप तो हो ही ज्ञान योग की मूरत दीदी, आप तो हो ही ज्ञान योग की मूरत। आज हमने भी उस दिव्य गुणों की सीख ली दीदी जी, आपका हम सब की तरफ से हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं।